ఓం శాంతి. एक दिन एक शाम को एक दुकानदार अपनी दुकान बंद ही कर रहा था कि वहां पर एक कुत्ता आ गया. उस कुत्ते के गले में एक थैली थी. आवाज आ रहा है ना पीछे? है ना? उस कुत्ते के गले में एक थैली थी और उसके दांतों में एक कागज की चिट्ठी. दुकानदार ने वो चिट्ठी ली. उस पे ये लिखा हुआ था कौन कौन सी चीजें चाहिए. दुकानदार ने वो सारी चीजें निकाली. कुत्ते के गले में जो थैली थी उसमें पैसे रखे थे. दुकानदार ने वो सारी वस्तुएं उस थैली में डाली और वो पैसे जितने के हुए थे उतने ले लिए. कुत्ता वापस लौटा. दुकानदार को आश्चर्य लगा, इसका मालिक कौन होगा? कैसी इसने ट्रेनिंग दी है इस कुत्ते को? तो दुकानदार उस कुत्ते का पीछा करने लगा. कुत्ता एक बस स्टैंड पर जाकर रुका. मालिक भी उसके पीछे पीछे आया. कुत्ता बस में चढ़ा, मालिक भी चढ़ा, दुकानदार भी चढ़ा. टिकट कंडक्टर आया. कुत्ते के गले में जो पट्टा था उसमें कहां जाना है उसका एड्रेस लिखा था. कंडक्टर ने वो चिट्ठी देखी. बैग में पैसे रखे थे. पैसे लिए, टिकट बनाई. कुत्ते ने टिकट अपने मुंह में रख दी. दुकानदार आश्चर्य से देख रहा था, ये क्या हो रहा है? कोई एक बस स्टैंड आया. कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई. बस रुकी. कुत्ता नीचे उतरा, दुकानदार भी उतरा और कुत्ते का पीछा करने लगा. कुत्ता जाकर एक घर के पास खड़ा हुआ और बेल बजाने लगा. अंदर से मालिक आया एक डंडा लेकर और कुत्ते को मारने लगा. कुत्ते का जो मालिक था वो निकला बाहर और कुत्ते की पिटाई करने लगा. दुकानदार को आश्चर्य हुआ, ये क्या, इतना अच्छा कुत्ता सब कुछ करता है, उसको तुम मार रहे हो? वो कहता है, बिल्कुल काम चोर है, दूसरी चाबी नहीं लेके जा सकता था जो मुझे उठा दिया? संसार का यह नियम है और मनुष्य की यह प्रवृत्ति है, कितना भी खुश करने की कोशिश करो, जो भी करो उनके लिए, जो किया उसको नहीं देखते और जो नहीं किया वो क्यों नहीं किया और अच्छे से क्यों नहीं किया उसी को देखते हैं. और मनुष्य का स्वभाव सार्वजनिक है. सेवाओं के इस मार्ग पर सेवाएं तो बहुत करनी है पर साथ साथ सहन भी उतना करना पड़ता है. परंतु जिसके लिए सहन कर रहे हैं उसके प्यार के आगे सारी यातनाएं, सारे दुख, सारे दर्द, सारी पीड़ा गौन है। जिससे प्यार किया है उसके प्यार के आगे, तेरे प्यार के आगे हर सुख फीका, वो ताज फीका, वो तख्त फीका। हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, बाबा ये कितने प्यारे नजारे, मौजों के ये दिन, मिलन की ये रातें, बीते कभी ना। मौजों के ये दिन, मिलन की ये रातें, बीते कभी ना, थम जाए हर पल हर दम। ऐसा उसका प्यार है। संसार तो जैसा है वैसा ही रहेगा, परंतु जिससे प्यार है उस प्यार के आगे, जिससे प्यार किया है उस प्यार में, प्यार किया तो डरना क्या। इस ओखली में सर डाला है तो मूसल तो लगेगी। मराठी में क्या कहते हैं उसको, खलबत्ता, उसड़ मुसड़। तो कूटते हैं ना धान, उसमें बड़ा जो होता है ओखली, धान कूटते हैं उस पे, अगर उसमें कोई सिर डाल दे तो खाना तो पड़ेगा, बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता। यह ब्राह्मण जीवन भी ऐसा ही कुछ है, सब कुछ सहन करना है यहां पर। वो ओखली कौन सी है इसकी हम चर्चा करेंगे, और वो मूसल कौन से है उसकी हम चर्चा करेंगे, और वो भय कौन से है जिन्हें हम, जिनसे हमें निर्भय होना है, डरना नहीं है। हम बड़े चले निर्भय होकर, जग के अंधियार मिटाएंगे। कोई शत्रु बनकर आए तो उसे शिव का मीत बनाएंगे। सूरज भाई जी का लिखा हुआ यह गीत है। हम बड़े चले निर्भय होकर, ओखली क्या है, सात बातें। कौन सी ओखली है ये? यज्ञ ही ओखली है। सबसे पहला तो इस यज्ञ में आना, अर्थात ओखली में आना। आते ही मूसलों की धारा चालू, कूटना चालू। परंतु 7 डेज कोर्स में कोई बताता है अपने स्टूडेंट्स को, कोर्स कराते समय ये कोर्स ओखली है करके बताता है कोई? खबरदार, आत्मा का पाठ तो पढ़ा रहे, सुख शांति का सहज राजयोग का मार्ग तो बता रहे, परंतु ब्रैकेट में मूसल और ओखली के लिए तैयार नहीं बताते ना। अभी बताना चालू करना अपने स्टूडेंट्स को कोर्स कराते समय। हम क्यों बताएं? हमें किसी ने बताया था क्या? हम तो आ गए ना, हम फंस गए, हम भी नहीं बताएंगे, आने दो उनको भी। हमको तो किसी ने नहीं बताया यहां ऐसा ऐसा होगा। हमें तो कहा था यहां तो बहुत सुख शांति, परमात्मा, सहज राजयोग, टोली, भोग, बोली। ये यज्ञ ही ओखली है, इसी यज्ञ में आ जाना। क्योंकि अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा चुकतु होंगे। बाहर वालों के साथ नहीं, लौकिक वालों से नहीं, यहां वालों से। 84 जन्म देवी देवता साथ में रहे, द्वापर में भी सात थे और सभी का पद बहुत ऊंचा था, छोटे मोटे नहीं थे। कोई एक देश का राजा था, कोई दूसरे देश का राजा था। एक राजा ने दूसरे देश पर आक्रमण कर दिया, उसके राज्य को तहस नहस कर दिया, राजा बेघर हो गया, कितने सैनिक मारे गए। वो दूसरा राजा क्या बनकर आया है? अब कुछ तो बनकर आया है, ऊपर नीचे आगे बाएं, कहीं ना कहीं तो वही है। गृहस्थी में भी आया है, बच्चे बनकर, पति बनकर, पत्नी बनकर। हम भी कभी साहूकार थे, छोटा मोटा तो पद कभी था नहीं किसी जन्म में। किसी जमीन, किसी गरीब की जमीन तो हड़प्पी होगी कभी ना कभी, कि नहीं? किया तो होगा ऐसा कुछ, बेचारा परिवार भूख से मर गया होगा, वो भी ब्राह्मण ही था। पर अब तो आएगा ना हमारे ही सेवा केंद्र में साथी बनकर, कुछ ना कुछ करने, हिसाब किताब चुक तो होगा। कितनी आत्माओं ने हमारी वजह से शरीर छोड़ा होगा, हमारी यातनाओं की वजह से, हमने बहुत सताया होगा, जीना मुश्किल कर दिया था उनका, बहुत रुलाया था आत्माओं को। वो आएगी या नहीं आएगी? आएगी, ब्राह्मण ही थी वो भी, उन्हीं के साथ थे हम तब भी और अब भी। ऑफिस में भी, यहां तो बहने बैठी है, परंतु ऑफिस में भी बॉस बनकर, कलीग बनकर, साथी बनकर, जूनियर बनकर, सीनियर जूनियर और कंपेनियन, आसपास वही सब आत्माएं हैं जिनका हमारे से हिसाब है, और वो हिसाब चुकतु होना ही है, उसके सिवा हम संपूर्ण नहीं बन सकते। इसके लिए कब तक, कहां तक, कितना हम सहन करें, ये प्रश्न ही नहीं है। अच्छा है वो है, एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है, इन्वर्टेड कॉमा, न स्थान बदलेगा, न व्यक्ति बदलेंगे, और ना ही परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें ही बदलना है। स्थान भी वही रहेगा, उसी स्थान पर बैठकर अब संपूर्ण बनो, वही सेवा केंद्र, स्थान नहीं बदलेगा। व्यक्ति आसपास वही रहेंगे, उन्हीं के बीच, परिस्थिति भी नहीं बदलेगी, वैसी है या फिर उससे भी अधिक विकराल होगी, दुखों के पहाड़ गिरेंगे। प्रतिकूल परिस्थिति में संपूर्ण बना जाता है, अनुकूल परिस्थितियों में नहीं। प्रतिकूल सब विरोध हो रहा है, उस परिस्थितियों में संपूर्णता का कमल खिलता है, उस कीचड़ में, उस विपरीत परिस्थितियों में, उन विषमताओं में। और ये होगा अगर हमारा मन इसे स्वीकार नहीं करता है, तो दुख का मार्ग है वो, हमने चयन किया है दुख का मार्ग, दुखी रहने का मार्ग, निरंतर दुख में बीतने का मार्ग। यदि हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, उस यज्ञ में आना अर्थात इस ओखली में सिर डालना है, ये यज्ञ ही ओखली है पहला, दूसरा सबको पता है, सेवा केंद्र, सेवा केंद्र ही ओखली है। कई बहनें कहते, जब हम घर में थे तो स्थिति बहुत अच्छी थी, जब से यहां आई है स्थिति हलचल में है। पर जितना सहन करेंगे उतनी सुंदर मूर्ति बनेगी, और जितनी रिफाइंड मूर्ति बननी है। एक होता है बड़े बड़े हथौड़े लगने, इधर का चला गया, उधर का चला गया, इधर का चला गया, अब एक पत्थर है चेहरा, अब फाइन स्ट्रोक्स, दर्द भी ज्यादा होता है उसमें। जितने फाइन स्ट्रोक्स होंगे हथौड़ी के, छन्नी के, क्योंकि नाक बहुत सुंदर बननी है, तो ऐसी वैसी नहीं चलेगी, सीधी चाहिए। उसके लिए स्ट्रोक्स भी वैसे लगाने पड़ेंगे, इधर से कभी, इधर से कभी, नीचे से, हर तरीके से लगाने पड़ेंगे। आंख भी सुंदर चाहिए, कान भी सुंदर चाहिए, तो वैसी ही लगेगी। और जितनी ज्यादा जिसको लग रही है, अपना सुंदर चेहरा देख लो, ये है, यहां तक की ये यात्रा है मेरी, यहां तक पहुंचना है, इसलिए ये सब हो रहा है। सेवा केंद्र, यह सेवा केंद्र ही एक उखली है, परंतु यह सेवा केंद्र ही वह ढांचा है जिसमें संपूर्णता की मूर्ति बनेगी। तीसरा, तीसरा कौन सा आपने बताने चाहिए, ये सारे तो समर्पित जीवन, सिक सिक चुक चुक मरमर। पानी होता है, उसके अंदर घास होती है, उसको क्या कहते हैं, पानी के नीचे जो घास होती है, लवाड़ा। वो जो लवाड़ा होता है मराठी में घास, पानी ऐसे आता है तो ऐसे झुकता है, इधर से आता है तो इधर झुकता है। अगर वो सोचे मैं क्यों झुकूं, तो टूट जाएगा। चाहे कितनी भी तेजी से पानी बहे, परंतु वो इधर भी झुकता है उधर भी झुकता है। यही समर्पण जीवन है, उसको याद करना, हमेशा झुकना पड़ेगा। ये झुकना नहीं है, दूसरों को अपने चरणों में झुकाना है, अव्यक्त महावाक्य बाबा के। ये झुकना नहीं है, दूसरों को अपने चरणों में झुकाना है। तो यह समर्पित जीवन ओखली है। चौथा, सोचो फटाफट क्या हो सकता है। सेवा केंद्र में आ गया। स्थान, स्थान कहो या ऐसी स्थिति कहो कि जिसमें आने के बाद यह सब होगा। चौथा है स्टेज, वर्ल्ड स्टेज पर हम हैं। जो स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हैं उन्हें सुनना भी बहुत होता है। कभी कभी लोग अगर एक्टिंग पसंद नहीं आई तो क्या करते हैं, टमाटर मारते हैं, कोई कान पकड़कर नीचे ऊपर करने लग जाता है सामने जाकर कि बंद करो, कितना दुख दोगे अपने परफॉर्मेंस से। कोई प्रचार करते हैं, विरोध करते हैं, अंडे मारते हैं, न्यूज़पेपर में आता है, स्टेज पर अगर कुछ गड़बड़ किया, गलती की तो, या बोर किया ऑडियंस को, तो हम पत्थर फेंकते हैं। हम ऑडियंस, हम स्टेज पर एक्टर्स है। संडे कहा था ना, कल रिकॉर्डिंग हो रही है, धर्म की, राज्य की, संस्कारों की, संबंध की, गुणों की, पांच चीजों की सर्वश्रेष्ठता की रिकॉर्डिंग यहां हो रही है। वाणी, वायुमंडल, वृत्ति, तीनों चीजों का ध्यान रखा जाता है। वृत्ति अगर चंचल हो तो एकाग्रता नहीं होगी। रिकॉर्डिंग हो रही है कल्प कल्प की, चढ़ती कला की रिकॉर्डिंग और उतरती कला की रिकॉर्डिंग, सारी रिकॉर्डिंग यहां हो रही है। ये मूवी अभी रिलीज हुई नहीं है, होने वाली है। बस 5000 साल की मूवी का रिकॉर्डिंग अब हो रहा है, रिहर्सल हो रही है, शूटिंग चल रही है यहां पर। एक बार अगर मूवी रिलीज हो गई उसमें फिर कोई बदल नहीं करते, जो है वही है। संसार में भी बस वही मूवी हमेशा के लिए रह जाती है, फिर चेंज नहीं होती है। तो यहां पर भी 5000 साल की मूवी, क्या नाम है इसका, कोई नाम सोचा है इस फिल्म का, 5000 साल वाली, क्या नाम है? कोई नाम हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, क्या कहेंगे, विश्व ड्रामा और अनादि ड्रामा, अविनाशी ड्रामा, वर्ल्ड इटर्नल ड्रामा, ये सब छोड़ के और कुछ? जो नाम होता है मूवी का, उसकी तैयारी से लोग जाते हैं तो वो देखकर घबराते नहीं है। इस मूवी का नाम ही है खूने नायक खेल। खून खराबा होगा पहले से ही है, नाम ही दिया हुआ मूवी को, नाम ही, जैसे किसी मूवी का नाम दिया है मर्डर, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि सब शांति से और प्रेम से चल रहे हैं और लास्ट तक वैसे ही है और मूवी एंड हो गई, ऐसे नहीं हो सकता है। नाम जैसा है यथा नाम तथा काम, भगवान का नाम ही रखा है मूवी का खूने नायक खेल। खून की नदियां बहेगी, मौत का बाजार गर्म होगा, मौत सामने खड़ा है, कुछ भी नहीं बचेगा। इन आंखों से जो कुछ देखते हो, आंखों सहित सब खत्म हो जाएगा। तो हम स्टेज पर हैं, ये स्टेज ही ओखली है। सेवा स्थान एक दो के साथ नहीं हो, संडे की मुरली, परंतु सेवा स्टेज पर हो। कितना अटेंशन रहता है उस स्टेज पर जब कार्य करते हो, तो स्टेज कितने हो गए? चार। अगला क्या हो सकता है? सोचो, अभी अभी सोचो। पब्लिक लाइफ है ये, हमारा पर्सनल लाइफ नहीं है, ये पब्लिक लाइफ है। पब्लिक सेक्टर में हम खड़े हैं, हमको देखने वाले, एक तो स्टेज कहा और ये दूसरा पब्लिक लाइफ है। हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ यहां होता है, सारी दुनिया देखती है, पब्लिक के संपर्क में है हम। वो है माया की गवर्नमेंट, ये है पांडव गवर्नमेंट, यहां पर हम हैं। और ओखली कौन सी है? क्या हो सकती है? मधुबन, मधुबन रहते हम यहां हैं, पर कई समय हम उधर भी तो रहते हैं बीच बीच में। वहां की अपनी माया है। अभी अभी किसी क्लास में शायद चर्चा की थी मधुबन की माया, संडे की मुरली में था ना, क्या माया मधुबन में भी आती है? उसमें भी कुछ पॉइंट्स निकाली थी बहनों ने, ही बहुत सारी पॉइंट्स बताई थी, याद है किसी को? कौन कौन सी? पहले तो टक्कर स्वभाव संस्कार की, मधुबन में माया, गए थे भगवान से मिलन मनाने और झगड़ा हो गया सुबह सुबह किसी से, क्या करे अब। शाम को बाबा मिलन, बाबा सामने दिख रहा है, मन में वही व्यक्ति घूम रहा है, उसने मुझे ऐसा कहा, कुछ करना पड़ेगा। कोई फिर दूसरा भी मिल जाता है, उसने मुझे भी कहा था, अच्छा तुमको भी कहा था, सपोर्ट, दोनों मिलके कुछ करेंगे अब, एक बार ये बाबा का हो जाए पूरा फटाफट हो जाए तो बाकी काम कितने हैं, जल्दी जल्दी चला जाए फिर बाकी करेंगे जो जिसके लिए आए थे। टक्कर, दूसरा एकोमोडेशन, ये तो मुख्य है, जाते बराबर मूड ऑफ तीसरा ट्रांसपोर्ट, यहां से वहां जाना है, वहां से वहां जाना है, गाड़ी नहीं है, कितना देर वेट करे, वेटिंग वेटिंग वेटिंग, कोई है क्या, कोई जा रहा है क्या मधुबन, ऊपर ऊपर से कोई नीचे जा रहा है क्या, ज्ञान सरोवर जाना है, कोई गाड़ी जा रही है, अब गाड़ी कोई नहीं है बहन जी, अब बैठो इधर ही। शॉपिंग, बाजार लगा हुआ है बहुत बड़ा, बहुत कुछ खरीदना है सेंटर के लिए भी और बाकी वो के लिए भी। और क्या? हाँ, उस पे भी आएंगे शॉपिंग, और शॉपिंग के बाद है चेयर, जिसको हम नाम देते हैं कुर्सी। कुर्सी की तो लड़ाई है दुनिया में, इधर भी कुर्सी, इधर अलग प्रकार, इधर हमारा सब अलौकिक है। हम वैसे थोड़ी ना है, वो कुर्सियों के पीछे नहीं है हम, हमें कुछ लेना देना नहीं है उन कुर्सियों से, हमें ये वाली कुर्सी चाहिए। बाबा के सामने एकदम एकदम दृष्टि पावरफुल बाबा से ले सके, चेयर। उसके बाद मधुबन की माया, वो टक्कर, पहला जो पॉइंट बताया था संबंध संपर्क, अच्छा उस तरह से, तो उसको हम कह सकते हैं चिटचैट। और फिर है मुख्य भोजन, भोजन ये खाऊं वो खाऊं, इधर क्या बना है उधर क्या बना है, ये खीर कहां से लाई, जनरल में तो नहीं थी। एक्स्ट्रा है क्या? आइसक्रीम, कोई दूसरा फ्लेवर है तो देखो, ये वही वही हमेशा व्हाइट। साइट सीइंग, यहां घूमो वहां घूमो, वहां घूमो यहां घूमो, इधर जाओ उधर जाओ, उधर जाओ यहां जाओ। सूक्ष्म माया है मधुबन की भी। और भी कुछ है मधुबन में? सब अनुभवी है, बता सकते हैं। बीमारी बहुत महत्वपूर्ण है, बीमारी, मधुबन में गए और बीमार पड़ गए। चलो हम नहीं पड़े, पर माताओं को लेके आए थे, उसमें से एक माता बीमार पड़ गई, अब क्या करें, अब उसको मैनेज करो उधर, उसके घर को बताओ, फिर उनके फोन, और थोड़ी ज्यादा ही सीरियस हो जाए तो फिर तो मुश्किल ही है। पहले इतनी सारी बीमारी थी, क्यों बंद कर दी दवाइयां? माताजी कहती है पहले से चालू थी, अभी 10 दिन से बंद कर दी जब से मधुबन में आई, क्योंकि मिली ही नहीं दवाई, क्या करें। हजारों कारण देते, हमारे पास बहुत सारी माताएं आती है, बहुत, इतने अच्छे अच्छे कारण होते हैं उनके, बहुत सारे। और एक दूसरी माया है, कोई माता अगर गुम हो जाए तो, जिसको यहां से लेके जा रहे थे ट्रेन में, ठीक है, एक स्टेशन पे उतरी माता, और बाद में हमारी ट्रेन चालू हो गई, देख रहे माता जी है ही नहीं, अब क्या करें, पूरा ढूंढे 12 डिब्बे इधर से लेके, कहीं पर नहीं दिख रही माता, कहां ढूंढे, उसके पास पैसे भी नहीं, उसके घर वालों को हमने बताया था कि हम लेके जा रहे हैं, वो तो जाना नहीं चाहती थी, हमने ही बोला था चलो, कितने समय से वो ज्ञान में है पर बाबा से नहीं मिली, हमने कहा चलो हम इस बार लेके जाएंगे, और माता जी गुम। हुआ किसी के साथ ये? बहुत सारे साइट सीइंग में घुमाने गए, माता जी कहां चली गई पता नहीं, दिलवाड़ा में मंदिर में गुम है ही नहीं, बस रुकी हुई है पूरी, माता जी गुम। और क्या कहा? हाँ बॉम्बे में तो बहुत होता है। उसके बाद है सामान गुम, एक है माता गुम, दूसरा है सामान गुम। टिकट गुम, पैसे गुम, मोबाइल गुम, चप्पल मुरली बाद में, पहले चप्पल मिलनी चाहिए। एंगेज कर देता है, पर्स गुम, बच्चा गुम, बैज गुम, अनाउंस करते नहीं इसकी मम्मी गुम हो गई है, जहां कहीं हो आ जाए, हाँ हैज गुम, जिसको मिला वो खोया पाया विभाग में दे दे, मोबाइल गुम, बहुत सारी है। ये भी एक ट्रेनिंग है, ये भी एक ट्रेनिंग है, मैनेजमेंट करना, कैसे सबको ले जाना, कैसे सबको कंट्रोल में रखना, ये मैनेजमेंट स्किल्स में आता है सारा। हाउ टू बी ए लीडर, लीडर कैसे रहना, क्योंकि माताओं को कुछ समझ में नहीं आता है, आधे से ज्यादा अनपढ़, उनको कुछ पता नहीं कहां जाना है, कैसे जाना है, और महत्वपूर्ण बात, भाषा नहीं आती है हिंदी, अगर गुम हो गई तो क्या बोलती है कुछ समझ में नहीं आता है, आधा मराठी आधा हिंदी, हिंदी मराठी और कभी कभी खाली मराठी, सबको लेके जाना ये एक ट्रेनिंग है। सबको टाइम पर आने के लिए कहना, क्योंकि पूरी बस रुकी रहती है उस एक व्यक्ति के लिए, उनको ये सिखाना पड़ेगा हमको, उनको कहां से पता, वो तो बेचारे साधारण जीवन जी रहे थे, परंतु इस ईश्वरीय नियम कायदे कानून उनको कहां से पता, उन्हें सिखाना पड़ेगा, टाइम पर आना, मैनर्स वहां के, क्या पहनना और क्या नहीं पहनना, किस तरह के कपड़े मधुबन में पहने जाए वो सिखाना, ये सब हमारा कर्तव्य है। भाइयों को भी सिखाना, कुमारों को भी सिखाना, उनको कहां से पता चलेगा, हम सिखाते भी हैं परंतु और अच्छे से, ताकि कोई गलती ना हो, वहां पर कैसे रहना, अगर गुम हो जाए तो क्या करना, उसकी भी ट्रेनिंग, जाते समय किसी की टिकट पे कोई और जा रहा है, वहां अगर पकड़े गए वो एक दूसरी माया, इस बहन के नाम पर वो बहन, कभी कभी बहुत पक्के होते हो, कड़क होते हैं, फोटो वीडियो सब देखते हैं, माता है बोली होती है ना, तो मधुबन भी ओखली है एक, वहां पर भी कठोर वचनों का सामना करना पड़ेगा, कोई बहन अगर ज्यादा दिन तक ही दिखी रही रोज मधुबन में तो तुरंत प्रश्न, कहां से है ये, यहां क्यों रुकी है, कुछ तो हुआ है, व्यर्थ और परचिंतन करने वालों की कमी नहीं है, अंबार लगे हैं। जिनको ज्ञान और योग में रस नहीं वो इस ब्राह्मण जीवन का आनंद कैसे लेंगे, परचिंतन और परदर्शन से, उसी में खुशी है। शाम को जब मिलेंगे तो यही चर्चा, तो सहन तो करना पड़ेगा उधर भी, कोई आके कह देगा धर्मशाला है जो यहां रुके हो, तो दुख होगा, होगा ना थोड़ा, रात भर बैठ के रंगोली निकालो, सुबह आके कोई कह दे ये कोई रंगोली है, दुख होगा कि नहीं। उस दिन कहा था क्लास में, बुद्धि में धारण करना है तो घड़ा अगर उल्टा हो तो धारण नहीं होगा, छिद्र है तो धारण नहीं होगा, और पहले से किचड़ा भरा है तो धारण नहीं होगा, परंतु यहां उल्टा खड़ा भव। यहां पे वैसा बनना पड़ेगा कि असर ना हो, हम किस लिए गए हैं, किस कार्य के लिए गए हैं, और हमें यदि विश्वास है और निश्चय है कि जो हम कर रहे हैं वो राइट है और श्रीमत अनुसार है, और उसके बाद में भी यदि विरोध और जो भी सारी बातें बताई तभी होता है, तो वहां पर फिर अडोल रहना है, इधर से सुना और इधर से गया, दुखी नहीं हो जाना है फिर वहां से, मुझे ऐसा कहा, मधुबन भी ओख ली है, उसमें भी हमने सिर डाला है, हमारे दो घर हैं ना, एक यहां और एक वो, आधा समय इधर रहता है आधा समय उधर रहता है, टोली एक दूसरी माया, खाने के लिए नहीं, स्टॉक लेके जाने के लिए, इतनी हुई ओख लिया, चार की पांच छह, अभी सातवीं कौन सी हो सकती है, डिपार्टमेंट, अच्छा चलो डिपार्टमेंट भी एक है, और भी सभी बताएंगे एक एक, जिसकी जिसकी ओखली अपनी अपनी पर्सनल ओखली बता दो, चलो एक है सार्वजनिक एक है व्यक्तिगत, और भी है कोई, नींद वो माया में आएगा, ओखली अर्थात जहां जाते ही मुसलों का वार, अकाउंट्स हाँ इसको लिया जा सकता है, अकाउंट्स क्यों, अकाउंट का भय है, नहीं ना, सुनना पड़ता है क्यों, क्योंकि उसका भय है, हमें भय उस चीज से होता है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, एक व्यक्ति है जो कभी मुंबई गया ही नहीं है, उसको कहा तुमको लोकल से दादर से विरार जाना है जाओ, कितना भयभीत रहेगा, भय का एक कारण है इग्नोरेंस, अज्ञान, इंफॉर्मेशन की कमी, इसके लिए वो हम भय की विधि में आएंगे, भय से मुक्ति के, जिससे भय है उसी को जानने की कोशिश करना है, अकाउंट से भय है तो अकाउंट की स्टडी करनी है, क्या किया जाना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स की थोड़ी स्टडी, फाइनेंस की स्टडी, इकोनॉमिक्स की स्टडी, उसके बारे में अपना नॉलेज बढ़ाना है ताकि वो भय की स्थिति ना हो, स्टडी करना होगा उसके लिए, तो ऐसी कुछ ओखलिया है, ओखली में क्या डालते हैं हम, सिर, अभी सिर कौन कौन से है, सिर अर्थात क्या, सिर अर्थात बुद्धि, उसको हम ले लेंगे, अपनी बुद्धिमत्ता का अहंकार ये इसमें डालना है, और सिर अर्थात मैं और मेरा, ये सिर इसमें डालना है, तीसरा विशेषता है, ये भी सिर है, इसको इसमें डालना है, चौथा लौकिक शिक्षा, हम बहुत पढ़ी लिखी है, ये भी सिर है, अगला ऊंच कुल, लौकिक में हम बहुत अमीर थे, बार बार मुख से निकलता है सहज, हमारा बहुत बड़ा परिवार था, सब कुछ था उसमें, और सिर अर्थात बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, बुद्धि जिसको कहा, मैं मेरा, विशेषताएं, घर, कुल और कला, विशेषताओं में आ जाएगा कला, विशेषताओं में कोई कला में पारंगत है हम, लौकिक शिक्षा और संस्कार, वो भी सिर है, एक संस्कार भी सिर है, और भी कुछ, पद या स्टेटस एक ही चीज है, तो ये सारे जो सिर है ये इसमें डालना है, अर्थात स्वाहा करना है। जब तक ये स्वाहा नहीं किया जाता और इनका सूक्ष्म अहंकार अंदर रहता है, चोट लगेगी, जो मूसल लगेंगी उनसे आहत होंगे और दर्द होगा, इसलिए क्या कहा है कहावत में, ओखली में सिर डाला है तो मूसलों से डरना क्या, परंतु फिर भी डर है, इस डर से कैसे मुक्त हो, मुख्य चर्चा तो ये है अगले 5-10 मिनट में और फिर इसको पूरा करते हैं, कैसे इस डर से मुक्त हो, या फिर किसी भी प्रकार का डर कैसे मुक्त हो। हमारे पास बहुत सारी अलग अलग प्रकार की, भारत और विश्व भर से बहने आती है, एक एक दिन में लगभग 30-30 बहने, अलग अलग कंप्लेंट्स, अजीब अजीब प्रकार के भय है, किसी को अंधेरे से भय, किसी को एकांत स्थान से भय, कोई अकेले सो नहीं सकती, किसी को सांप दिखते हैं, किसी को भूत दिखते हैं, किसी को कुछ दिखता है, किसी को पूर्व जन्म की यादें आती है, बहुत सारी चीजें है उसमें, भय है, किसी को बीमारी का भय, दूसरे को देखा कोई बीमार है तो एकदम से भय पकड़ता है कि अगर मुझे हो गई तो, हुई नहीं अभी, हो गई तो, जब भी कोई पेशेंट को देखते तो मुझे हो गई तो, रास्ते पर चलते हुए भिखारी देखते तो लगते मेरी ऐसी हालत हो गई तो, अगर मुझे निकाल दिया गया तो मैं कहां जाऊं, भय, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी, बहुत डर है हर चीज का, किसी को डांट मिलने का डर, अगर मुझे डांट दिया तो, अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो, भय 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 भय, भय से मुक्ति की कुछ विधियां है, पहली फेस इट, जिससे भय लगता है उसका सामना करना है, आंखों में आंखें डालना, देखना है उसको, वो भाग जाएगी। स्वामी विवेकानंद के जीवन में उदाहरण दिखाते हैं, कुछ बंदर उनके पीछे लग गए थे और वो भागने लगे, वो सन्यासी, सन्यासी के वस्त्र धारण किए हुए और बंदर पीछे और वो भाग रहे, एक दूसरे सन्यासी ने उसको देखा और कहा कि तुम भागते क्यों हो, खड़े रहो और उसको देखो, उनको, वो भाग जाएंगे, फेस द ब्रूट्स, उनका सामना करना, जिस जिस चीज से भय लगता है उसको पूरा इन ऑल नेकेडनेस, जैसे वो है उसको वैसे देखना, वो इतने भयावह नहीं है जितने वो हमको डराते हैं। वो कहानी हम बताते हैं हमेशा कि एक महिला थी, उसको रोज एक ही स्वप्न आता था, एक बहुत काली छाया राक्षस की जैसा उसका पीछा करती थी, घना जंगल, अंधेरी रात, और वो भाग रही है, भाग रही है, बहुत धड़कने बढ़ रही है और वो काली छाया पीछे से उसके आ रही है, बहुत खतरनाक, रोज एक ही स्वप्न, और उठती थी तो धड़ 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 धड़, धड़कने बड़ी हुई, रोज एक ही स्वप्न, इतना डरावना वो स्वप्न, क्या करे। लोग उससे पूछते थे, तुमने कभी उस परछाई को देखा, वो कहां देखूं, वो मेरे पीछे भागती रहती है, भागती रहती है, भागती रहती है, और मुझे डराती है, आवाजें आती है कुछ कुछ। एक दिन वो रात में स्वप्न देखती है, वही स्वप्न, वो भाग रही है, 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 और एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाती कि नीचे खाई है, अब क्या करे, नीचे गिरती है और मुड़ के देखती है तो वो काली छाया एक खतरनाक एकदम उसके ऊपर आ जाती है ऐसी। वो पूछती है, तुम कौन हो, वो कहता है, मुझे क्या पता, तुम्हारा स्वप्न है, मेरा थोड़ी है। हमारे जो भय होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं बहुत सारे, फेस देम पहला, दूसरा अंडरस्टैंड देम, उनको समझना वो भय क्या है, क्यों कर रहा है ये भय, एक तो सामना करना, दूसरा अंडरस्टैंड, उनको समझना मैं क्यों भयभीत होती हूं उस चीज से, ये तो कितनी छोटी सी बात है, दूसरे को तो भय नहीं लगता, मुझे क्यों भय लगता है, लेट हो गए क्या होगा। एक है चौकन्ना रहना अलग बात है, पर भयभीत हो जाना अलग बात है, इन दोनों में अंतर है। चौकस रहना है, चौकन्ना रहना है, अटेंशन रखना है, नियम मर्यादाओं का पालन करना है, परंतु भयभीत हो जाना, फोबियाज जिसको कहते हैं, अननेचुरल फियर्स, वो ना हो। अगला है प्रतिपक्ष भावना, संस्कृत शब्द है प्रतिपक्ष भावना, अर्थात विरोधी विचारों को मन में उत्पन्न करना, विरोधी विचार, जैसे उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति है उसको बहुत दारू पीता है और जितना जैसे ही दारू पीता है चारों ओर सांप ही सांप दिखाई देते हैं, सब लोगों को कहता है मुझे इन सांपों से छुड़ाओ, लोग कहते हैं अरे ये सांप झूठे हैं, बहुत समझाते हैं, दवाइयां देते हैं, ठीक नहीं होता है, क्योंकि जैसे दारू पीता है सांप ही सांप दिखाई देते हैं चारों ओर, ऐसे उसको काट रहे हैं जैसे फन उठाए। तो क्या किया जाए, एक दिन वो खुद ही हल निकाल लेता है, एक नेवला, नेवला पता है, मुंगूस, इंग्लिश में मुंगूस कहते हैं या हिंदी में भी मराठी में भी, तो इंग्लिश में भी मुंगूस कहते हैं, तो वो नेवला एक पिंजड़े में रखता है और उस नेवले को पिंजड़े को लेकर घूमता है, अब उसको कोई भय नहीं है। तो लोग उसको पूछते हैं ये क्या है, वो कहता है नेवला, बोलता नेवला क्यों रखा, क्योंकि मुझे चारों ओर सांप ही सांप दिखाई देते हैं इसलिए नेवला रखा है, लोग कहते हैं अरे वो सांप झूठे हैं, वो कहता है ये नेवला भी झूठा है, एक झूठ को खत्म करने के लिए दूसरे झूठ का निर्माण किया गया, एक कल्पना जहां भय है उससे मुक्ति के लिए एक दूसरी कल्पना को खड़ा किया गया है। प्रतिपक्ष भावना, ऐसी भावनाओं को निर्माण करना जो उसके विरोधी है, एक विचार उठ रहा है भयभीत वाला, दूसरी तरफ विचार उत्पन्न करो मैं शिव शक्ति हूं, समान के संकल्प उत्पन्न करना, एक तरफ विचार उठ रहा है, एक दूसरा उदाहरण क्रोध का, इतना क्रोध आ रहा है, छोटे से बच्चे को देखना हंसते हुए, फूलों को देखना, अपोजिट विचार, प्रेम के विचार क्रोध के लिए, वैसे ही भय के है तो निर्भयता के विचार उत्पन्न करो, उन सबको याद करो, उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करो, कैसे निर्भय थे, कैसे अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, कोई भय नहीं। कल शिवाजी जयंती थी, हम एक उदाहरण याद कर रहे थे, बाजी प्रभु देशपांडे अकेले लड़े, वो 300 की सेना पावन खिंड बन गया वो, और जब तक तोप का आवाज नहीं आया तब तक लड़ते रहे, कितनी निर्भयता, लाख मेले तरी चालतील पण लाखांचा पोशिंदा जगायला पाहिजे। ये निर्भयता कहां से आई, ऐसे उदाहरण अपने बुद्धि में रखना जिससे निर्भयता भर जाए, शक्ति भर जाए। प्रतिपक्ष भावना, अपोजिट थॉट्स, फिर है स्वमान का अभ्यास, ये तो सारी बातें आपको पता है, स्वमान का अभ्यास, आत्माभिमानी स्थिति, बाबा की मदद, समर्पण भाव, ये सब विधियां है भय से मुक्ति की। उसका आह्वान करना, बाबा ने कहा है मेरा आह्वान करो, ऐसी परिस्थिति में द्रौपदी ने कितनों को बोला, पुकारा, कोई नहीं आया, और लास्ट में आह्वान किया, वो तुरंत आ गया। तो अगर ये जीवन ओखली है और यहां पर मूसले है तो सहन करना पड़ेगा, भयभीत नहीं होके, निर्भय होके सब कुछ सहन करना पड़ेगा। सहन करने वाले ही क्या बनते हैं? सहनशाह बनते हैं। जिन्होंने सहन ही नहीं किया वो महान कैसे बनेंगे? इस इतिहास को देखो संसार के, वहां से लेकर यहां तक, द्वापर से अब तक सबने सहन किया है। तुकामने संत सोसी जगाचे आघात, जग के जो आघात है सहन करने वाला वह संत है। टाइम हो रहा है, ओम शांति।